الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم اپنے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ ان کی کتاب مثالی مرد میں سے مثالی بیٹا کا عنوان پڑھ رہے ہیں. اس میں ہم صفحہ نمبر 75 کے اوپر تھے، پیج نمبر 75، اور جو آخری ٹاپک ہم نے پڑھا تھا یا ہیڈنگ پڑھی تھی وہ تھی والدین کی خدمت پر ملنے والا اجر. ٹھیک ہے، تو سورہ بقرہ کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ واقعہ کہ جس میں کہ بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تھا، تو اس کو حضرت نے یہاں پر مثال کے طور پر پیش کیا ہے کہ وہ جو لڑکا تھا جس کی وہ گائیں تھیں وہ اپنی ماں کا بہت زیادہ فرما بردار تھا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو یہ دنیاوی بہت بڑا جو ہے وہ اجر ملا کہ بہت یعنی بیش قیمت گائیں جو ہے نا اس کو اس سے پھر بنی اسرائیل والوں نے خریدا بہت زیادہ قیمت ادا کر کے. تو اس میں آپ کو ایک اصول بتایا تھا کہ جو ماں باپ کا کی خدمت کرتا ہے اور ان کی یعنی رضا حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نا اس کو دنیاوی رزق بھرپور عطا فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے جو نہیں کرتا تو پھر دنیاوی رزق کا معاملہ جو ہے اس کا خراب ہو جاتا ہے. جو استاد کی خدمت کرتا ہے اور اس کو خوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے جس علم کے استاد کی خدمت کرے گا تو اسی علم میں سے اس کو وافر حصہ عطا ہوگا. اور جو اپنے شیخ کی یعنی روحانی رہنما کی خدمت کرتا ہے اور اس سے جو ہے وہ یعنی اچھا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ روحانی ترقی عطا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی نیکی کے اندر نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. تو اس اصول کی یاد دہانی کے بعد ہم اگلا عنوان پڑھتے ہیں کہ والدین کا نافرمان اللہ کا نافرمان. بہت سوچنے سمجھنے والی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ، جو میرا نافرمان ہو مگر ماں باپ کا فرما بردار ہو تو میں اس کا نام فرما برداروں میں لکھ دیتا ہوں، اور جو میرا فرما بردار ہو مگر ماں باپ کا نافرمان ہو تو میں اس کا نام اپنے نافرمانوں میں شامل کر لیتا ہوں. تو اب یہ جو یہاں پر ایک قول نقل فرمایا، تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کہاں سے حضرت نے اس کو یہاں پہ نقل کیا ہے؟ احیاء علوم الدین سے، جو کہ امام محمد غزالی رحمتہ اللہ علیہ کی کمپائل کی ہوئی کتاب ہے، احیاء العلوم الدین. ٹھیک ہے، اور بہت ہی زیادہ یعنی اس کے اندر دین کے علوم ہیں، فقہ بھی ہے اور باطنی علوم کے اوپر بھی حضرت نے بہت زیادہ تفصیلات اس کے اندر لکھی ہیں، اور ایک عجیب و غریب عجوبہ قسم کی وہ کتاب ہے. یعنی اتنا کچھ اس کے اندر ہے، اتنا کچھ اس کے اندر ہے کہ اس کتاب کے کمپائل کرنے کے بعد جو ہے نا امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کو مسلم امہ نے حجت الاسلام کا لقب دیا کہ دین اسلام کے اندر ایسی شخصیات کا موجود ہونا یہ گویا کہ اسلام کے لیے ایک حجت ہے، دلیل ہے کہ یہ حق دین ہے. ٹھیک ہے، تو اب ظاہر ہے کہ یہ دین جو ہے وہ کسی ایک شخصیت کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا، یہ اللہ کا دین ہے اور قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر یعنی اس کی بنیاد ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اچھا آ گیا، عقل مند آ گیا تو اب اس کی وجہ سے یہ دین جو ہے وہ سچا سمجھا جائے گا، اور اگر نہیں آتا تو نہیں سچا سمجھا جاتا، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ بس امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے کام کروائے، ایسے ایسے جوہر لکھوائے کہ ایک ایسے شخص کے لیے جو کہ دین کو نہیں مانتا اور جو کہ دین سے جو ہے نا بالکل بھی کنونس نہیں ہے، تو وہ بندہ جو ہے نا امام غزالی کے علمیت کو دیکھ کر کے यानी कन्विंस हो सकता है कि यकीनन ये दीन भी सच्चा होगा, जब ही ऐसे ऐसे गौहर नायाब जो है ना वो इस दीन के अंदर अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए। तो बहरहाल अयाउलुलुमुद्दीन से इस कॉल को नकल किया। अयाउलुलुमुद्दीन के अंदर पहली बात तो ये है कि उसमें बहुत सारी ज़यीफ़ रिवायात भी मौजूद हैं, ठीक है। तो अयाउलुलुमुद्दीन के रेफरेंस से जो है ना वो कोई सही हदीस वगैरह साबित नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस कॉल का अगर ये सही है, ठीक है ना, सही हदीस है या जो है वो ये ऑथेंटिक कॉल है और इसके अंदर जो है वो यानी बनी इसराइल की रवायात वाला मसला नहीं है और ज़यीफ़ या मौजू बल्कि मौजू अहदीस भी बहुत सारी अयालुलुमुद्दीन के अंदर मौजूद हैं। तो अगर ये मौजू नहीं है, अगर ये ज़यीफ़ नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या है? यानी ये जो फरमाया ना कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर कोई मेरा नाफरमान है लेकिन अपने माँ बाप का फरमाबरदार है तो मैं उसका नाम फरमाबरदारों में लिख देता हूँ, ठीक है, और अगर कोई मेरा फरमाबरदार है लेकिन अपने माँ बाप का नाफरमान है तो मैं उसका नाम नाफरमानों में लिख देता हूँ। तो अगर तो ये सही रिवायत है तो फिर इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। बगैर एक्सप्लेनेशन के, बगैर वजाहत के ये चीज़ समझ में आनी मुश्किल है। मोस्ट लाइकली जो है वो इससे इंसान जो है ना वो गलत मतलब ही निकालेगा। तो इसका जो दूसरा पार्ट है ना वो तो रिलेटिवली आसान है, रिलेटिवली ईजियर है समझना कि भाई जो मेरा फरमाबरदार तो है मगर माँ बाप का नाफरमान है तो उसका नाम जो है मैं अपने नाफरमानों में शुमार कर लेता हूँ। तो इट्स वेरी सिंपल कि भाई अल्लाह ताला ही ने माँ बाप के साथ जो है ना वो हुस्न सलूक का हुक्म दिया है, वो बिल वालिदैन एहसाना, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने माँ बाप के साथ जो है वो फरमाबरदारी का और अतात का जो है हुक्म दिया है। तो इस वजह से अगर कोई अल्लाह की अतात कर रहा है, मतलब कुरान मजीद के अंदर जो नमाज रोज़ा हज जक़ात वगैरह के अहकाम आता हैं आ रहे हैं उनके ऊपर तो अमल कर रहा है, लेकिन माँ बाप का जो है वो दिल दुखा रहा है और माँ बाप के साथ जो है ना वो उनकी जायज़ बातों को भी जो है वो तस्लीम नहीं करता और उनके साथ बुरा मामला करता है, तो फिर ये तो अल्लाह ताला की नाफरमानी ही का एक बाब है, ठीक है। तो गोया कि कुछ अल्लाह ताला की बात मानता है लेकिन कुछ अल्लाह ताला की बात नहीं मानता, तो ऐसा शख्स जो है ना ये अल्लाह ताला का नाफरमान ही कहलाएगा, ठीक है। मे बी हेयर अल्लाह की नाफरमानी कुड मीन गुनाहे सगीरा, आई डोंट नो हाउ, पता नहीं गुनाहे सगीरा का इसमें क्या क्या लॉजिक बनती है। नहीं, मेरी नाफरमानी का गुनाह सगीरा क्या मतलब अल्लाह की नाफरमानी होती है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सगीरा और कबीरा वाली तो कोई बात ही नहीं हो रही। सगीरा तो यानी कबीरा और सगीरा के दरमियान जो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो फुकहा ने जो है वो सिर्फ दलाइल की मजबूती की बुनियाद पर करी है, जिसके ऊपर मजबूत दलाइल कतई दलाइल मौजूद हैं किसी फेल के अल्लाह की नाफरमानी होने पर कतई दलाइल मौजूद हैं तो वो जो है गुनाह कबीरा में उनका शुमार किया है, और जिन चीज़ों के ऊपर कतई दलाइल मौजूद नहीं है बल्कि जन्नी दलाइल मौजूद हैं, अब आपने इतना तो पढ़ लिख लिया कि आपको कतई और जन्नी का फर्क पता है, तो वो फिर गुनाह सगीरा है, ठीक है। या सजा की जो है ना वो इंटेंसिटी जिसके अंदर जो है वो ज़्यादा है कुरान और हदीस के अंदर तो वो गुनाह कबीरा है, और जिसके अंदर सजा की इंटेंसिटी इतनी क्लियरली डिफाइनिंग है तो फिर गुनाह सगीरा है। तो बस ये है फर्क गुनाह कबीरा और सगीरा में, अल्लाह की नाफरमानी तो फिर अल्लाह की नाफरमानी, इसमें तो गुनाह सगीरा ना कबीरा कोई इस किस्म की क्लासिफिकेशन नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह की नाफरमानी यानी जो माँ बाप का नाफरमान है वो अल्लाह का भी नाफरमान है, तो चूंकि अल्लाह की सेलेक्टिव फरमाबरदारी कर रहा है और सेलेक्टिव जो है वो नाफरमानी कर रहा है, तो इस वजह से वो नाफरमानों में ही शुमार होगा, ठीक है। अल्लाह ताला की फरमाबरदारी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ऐसा है कि जिसके अंदर नाफरमानी की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि 50% जो है फरमाबरदारी करा और 50% जो है नाफरमानी करा तो अब जो है ना ये 50-50 कहलाएगा कि 50% फरमाबरदार है और 50% नाफरमान है। नहीं, अल्लाह की माँ की फरमाबरदारी का तो मामला यह है कि 99% जो है ना वो अल्लाह ताला के हुक्मों को मानता है और 1% अल्लाह के हुक्म का इनकार कर देता है, तो ये जो है ना वो नाफरमान में आता है, ठीक है ना। इनकार कर देना से मुराद ये भी हो सकती है कि वो डिनाई कर देता है, कुफर कर देता है। तो ऐसा शख्स तो ईमान से ही खारिज हो जाता है, चाहे वो 99% को मानता है लेकिन सिर्फ 1% को नहीं मानता, ये शख्स ईमान से ही खारिज हो गया। दूसरी सूरत यह है कि डिनाई नहीं करता, ठीक है, लेकिन 99% जो है ना वो उसकी पाबंदी करता है और 1% जो है ना वो उसको अल्लाह ताला के हुक्म को तोड़ता है, और उसके ऊपर इसको कोई नदामत नहीं है, है ना, उसको जो है वो अपना हक समझ के तोड़ता है। 1% को तोड़ता है लेकिन अपना हक समझ के तोड़ता है, और ये समझ के तोड़ता है कि इसको तोड़ने से कुछ नहीं होता, है ना, 1% हुक्मों को तोड़ने से कुछ नहीं होता, ये तो हल्की चीज है, तो मामूली चीज है। तो ये 1% को हल्का समझने वाला ये नाफरमानों में शुमार होगा, ये फरमाबरदारों में शुमार नहीं होगा। फरमाबरदारों में तो सिर्फ वो शुमार होगा कि जो कि अपनी इस्तेताअत के मुताबिक अल्लाह ताला के हुक्मों पे अमल करने की कोशिश करता है, और जिन पे नहीं कर पाता तो उनके ऊपर जो है ना वो उसको एक खटका लगा रहता है कि नहीं ये मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है ना, आई शुडंट बी डूइंग दिस, लेकिन मैं कमजोर हूं और मुझसे जो है वो अपने आप को नहीं बचाया जा रहा, मैं कर जाता हूं, ठीक है ना। ऐसा शख्स बेशक 99% नहीं कर रहा है, सिर्फ 1% के ऊपर फरमाबरदारी कर रहा है, ऐसा शख्स फरमाबरदारों में आएगा। बात समझ आ रही है, ठीक है ना, यानी 90% जो है वो नहीं फरमाबरदारी कर पा रहा है, सिर्फ 10% के ऊपर फरमाबरदारी कर पा रहा है, लेकिन 90% के ऊपर नादिम है, शर्मिंदा है और परेशान है कि मुझसे गुनाह हो रहे हैं, ये शख्स फरमाबरदारों में है। और एक शख्स ऐसा है कि जो 99% के ऊपर अमल कर रहा है लेकिन 1% को समझता है कि जी कुछ नहीं होता, तो वो नाफरमान है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये जो दीन का के जो फंडामेंटल्स है ना, ये दुनियावी फंडामेंटल से जरा डिफरेंट है, ये दुनिया में इस किस्म के उसूल नहीं होते, ठीक है, ये तो बड़ों के साथ ये उसूल होते हैं और अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं। बहरहाल अल्लाह ताला किसकी इंटेंसिटी को बयान कर रहे हैं, इस कदर बुरा अमल है, लेकिन मकसद ये नहीं कि अल्लाह की नाफरमानी करना शुरू कर दें वालदैन की खातिर। जी एक मिनट, हज़रत व्हाट आई वाज थिंकिंग दैट इफ समवन कमिट्स गुनाह सगीरा एंड ओबेज पेरेंट्स देन हिज सगीरा मे बी फॉरगिवन, व्हाइल समवन डजंट कमिट गुनाह सगीरा एंड डिसओबेज पेरेंट्स देन ही विल नॉट बी फॉरगिवन। नहीं यार, बट आई वुडंट गो इन टू यू नो कैटेगराइजेशन ऑफ सगीरा एंड कबीरा वगैरह, ठीक है, बस सीधा सीधा फरमाबरदारी नाफरमानी वाली यहाँ पर बात हो रही है। बहरहाल तो जो उसका जो दूसरा पार्ट है वो तो बड़ा सिंपल है, इजी है अंडरस्टैंड करना, लेकिन जो पहला पार्ट है ना कि मेरी नाफरमानी करता है लेकिन माँ बाप की फरमाबरदारी करता है, तो यहाँ पर जो है ना वो यही है कि अल्लाह ताला की फरमाबरदारी जो है वो करने की कोशिश करता है, जानता है कि ये करना जरूरी है लेकिन कर नहीं पा रहा, 5 नमाजें नहीं पढ़ पा रहा, 3 नमाजें पढ़ पा रहा है लेकिन 5 नमाजें पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं रहा है, ठीक है ना, सुस्ती की वजह से नींद आ जाती है, काम में मसरूफ हो जाता है, या किसी से के खौफ की वजह से जो है 5 नमाजें नहीं पढ़ पाता है, 3 ही पढ़ पाता है खाली, ठीक है, लेकिन तो क्योंकि वो 5 नमाजें नहीं पढ़ रहा है तो इस वजह से ऐसे शख्स को जो है ना वो उर्फ के अंदर नाफरमान कहा जाएगा, उर्फ के अंदर नाफरमान समझा जाता है कि भाई 5 नमाजें तक भी नहीं पूरा पढ़ता, 3 नमाजें पढ़ता है खाली है, ठीक है, तो उर्फ के अंदर ऐसे शख्स को नाफरमान कहा जाता है। लेकिन वालदैन के साथ इसका बहुत अच्छा मामला है, वालदैन की खिदमत करता है, वालदैन का अदब करता है, वालदैन की जो है ना वो फरमाबरदारी करता है, तो ये शख्स जो है ना फिर अल्लाह ताला अपना हक माफ कर देंगे, जानते हैं ना ये बात तो पुरानी बात है, बचपन से सुन रहे हैं, अपना हक माफ कर देंगे, और ये जो हुकूक अल इबाद में जो ये बहुत बढ़ चढ़ करके मेहनत कर रहा है इसकी वजह से अल्लाह ताला जो है ना इसको फरमाबरदारों में लिख देंगे, यानी इसका हशर जो है वो फरमाबरदारों के दरमियान हो जाएगा, ठीक है ना, इसको उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना कि एक ऐसे शख्स को मिलता है जो कि अल्लाह ताला की भी फरमाबरदारी करता है और वालदैन की भी फरमाबरदारी करता है, उतना तो इसको सवाब हरगिज हरगिज नहीं मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन अजाब से भी अल्लाह ताला इसको बचा देंगे क्योंकि ये हुकूकुल इबाद की बहुत जो है वो पाबंदी कर रहा है, ठीक है। और बाकी ये कि जो शरीयत का उसूल है ना कि ला ताअत लिल मखलूक फी मासियत अल खालिक, जो कि इन साहब ने डायरेक्ट मैसेज के अंदर लिखा है, तो वो उसूल अपनी जगह पे कायम है, ठीक है, कि माँ बाप के हुक्म को मान करके अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की जा सकती, यानी माँ बाप के कहने पर अल्लाह ताला की नाफरमानी करना जो है ना, ये जायज नहीं है, किसी भी सूरत में जायज नहीं। कि माँ बाप खुश होते हैं इस वजह से नमाज छोड़ दो, माँ बाप खुश होते हैं इस वजह से जो है वो सूद का कारोबार कर लो, माँ बाप खुश होते हैं इस वजह से जो है वो और जो भी शरीयत के अंदर नाफरमानी है, तो माँ बाप को खुश करने के लिए शरीयत की नाफरमानियां कर लो। हरगिज हरगिज इस कॉल के अंदर वो कॉन्सेप्ट नहीं है, हरगिज हरगिज वो कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल के ऊपर बात हो रही है और वो एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल है। ठीक है, क्या इस तरह सुनकर फराइज में कोताही करते, इखलाकियात प्रायोरिटी पे रखते हैं और फर्ज इबादात को अलग रखते हैं? इखलाकियात प्रायोरिटी पे रखते हैं, फर्ज इबादात को अलग रखते हैं? नहीं, ये जो आजकल का मसला है ना, ह्यूमैनिटी फर्स्ट वाला मसला और मैनरिज्म्स फर्स्ट वाला मसला, ये आएगा उस डेफिनेशन के अंदर जो साजिद ने भी थोड़ी देर पहले बताई है, कि ये अल्लाह ताला के हुक्मों को हल्का समझता है और ये समझता है कि कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। ठीक है ना, आज जो ह्यूमैनिटी फर्स्ट वाला मसला बना हुआ है ना, ये बिल्कुल भी इस कॉल से कोई मुताबिकत नहीं रखता, इस कॉल से कोई मुताबिकत नहीं रखता। ठीक है ना, वो तो बिल्कुल दीन को बदल देने वाली बात है, दीन की डेफिनेशंस को भी उलट देने वाली बात है। ठीक है कि इखलाकियात अच्छी है और जो है ना वो यानी यू फराइज हैं, वाजिबात हैं, इनके कोई कोई जरूरत नहीं है, तो बस खाम खा के जो है ना वो एक यानी एक क्या कहते हैं, इंसानों ने गढ़ ली हैं और ह्यूमैनिटी के अंदर जो है वो डिवाइड पैदा करने के लिए किसी ने कोई तरीका इख्तियार कर लिया, किसी ने कोई इख्तियार, यानी ऐसी उल्टी हसीदी अजीब बकरातिया जो है ना झाड़ने वाली हरकतें हैं, तो वो बिल्कुल एक अलग चीज है, एंड दैट्स अ मॉडर्न मसला। ठीक है, ये तो हजरत यानी हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह के जमाने की बात हो रही है और वहां पे उन्होंने जो बात कही है वो आज की ह्यूमैनिटी फर्स्ट के वाली बात नहीं कर रहे हैं। तो बहरहाल सख्ती के बजाय नरमी, तो फरमाते हैं कि बाज़ नौजवान इस वजह से परेशानी में होते हैं कि वो दीनी मदारिस में आने की वजह से दीनी ज़िंदगी इख्तियार कर लेते हैं मगर माँ बाप की तरफ से उनको तआवुन नहीं मिलता, बल्कि माँ बाप सख्ती करते हैं यानी रोकते हैं उनको कि तुम टू मच मौलवी मौलवी मत बन जाओ, तुम्हें जो है वो इतना इसको सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं। इस किस्म के बहुत सारे जो है वो जुमले आम घरानों के अंदर इस्तेमाल हुआ करते हैं। तो अब ये जो नौजवान होते हैं ना, ये बड़ी मुश्किल में होते हैं, तो उन नौजवानों को चाहिए कि ये माँ बाप के साथ सख्त ना हो, बल्कि माँ बाप की सख्ती पर सब्र करें और अल्लाह से दुआएं मांगें ताकि अल्लाह ताला माँ बाप के दिल में मोहब्बत बढ़ा दें और वो सख्ती करना छोड़ दें। ठीक है, तो तुरंत जवाब देना कि ये अपने दीन की खातिर जो है ना वो यानी माँ बाप के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देना और उनको जो है वो डांट डपट करना और उनको बुरा भला कहना कि आप तो ऐसे हैं आप तो वैसे हैं, है ना, आपने जो है वो आपने हमें दीन नहीं पढ़ाया, आपने तो हमारा हक अदा नहीं किया और हमारा हक ये था कि आप हमें दीन के रास्ते पे डालते, आपने क्या हमें दीन के रास्ते पे कुछ भी नहीं डाला, आपने तो हमें दुनिया परस बना दिया, आपने तो हमें, यानी ये जो खरी खरी सुनाना जो है ना माँ बाप को, इसकी कोई गुंजाइश नहीं हमारे दीन में। ठीक है ना, तो उसूली तौर पर आप उसूल बयान कर सकते हैं, अगर आपको किसी ने कहा है कि आप जो है वो बयान करें, आप जो है वो कोई यानी क्लास पढ़ाएं, तो क्लास के अंदर आप लोगों को समझाने की खातिर कि भाई वो ये मत समझें कि वो माँ बाप अगर हैं किसी के तो वो अपने बच्चों को जो है ना वो दीन से दूर करना उनके लिए जायज़ हो जाएगा, और तो इस वजह से आप ये उसूल बयान कर सकते हैं, जैसे कि ये फकीर हर वक्त ये करता रहता है। ठीक है, मतलब आई वुड एडमिट कि मैं हर वक्त ये करते रहता हूँ, ठीक है ना, बिकॉज दिस इज व्हाट आई सी, लेकिन आप अपने माँ बाप को ये सारी चीज़ें नहीं सुना सकते, और अगर सुना चुके हैं तो उसके ऊपर नादिम और शर्मिंदा होकर के अल्लाह ताला से तौबा करें और माँ बाप से भी माफी मांग लें। ठीक है ना, तो ये डिफरेंट, ये बिल्कुल दो अलग अलग बातें हैं। एक होता है उसूल बयान करना दीन का, इल्म समझाने की खातिर, हालात समझाने की खातिर, मामला समझाने की खातिर, और एक होता है आप किसी को सामने रख करके जो है ना उसको पिनलाइज करना शुरू कर दें, वो भी माँ बाप नहीं, ये नहीं कर सकते। अच्छा, अगर माँ बाप खिलाफ हों बेटे की तबलीगी जमात में जाने के 40 दिन या 4 मंथ्स के लिए, चार मंथ से तबलीगी जमात में जाने के लिए माँ बाप खिलाफ हों, तो पहली बात तो इसके अंदर ये जान लें कि तबलीगी जमात में जाना जो है फ़र्ज़ नहीं है, जिस तरह नक्शबंदी इज्तमा में जाना फ़र्ज़ नहीं है, जिस तरह मलेशिया के इज्तमा में जाना फ़र्ज़ नहीं है, है ना भाई, तो तबलीग जमात को खाली क्यों टारगेट बनाते हैं, है ना? नक्शबंदी इज्तिमा भी फर्ज नहीं है, ठीक है? तो फर्जियत तो है नहीं इन चीजों की। फर्जियत तो भाई जो फर्ज है वही फर्ज है, अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते फराइज के अंदर, ठीक है भाई? क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि एक शख्स जो है वो उसका शेख जो कि उसका रूहानी डॉक्टर है, ठीक है ना, वो रूहानी डॉक्टर जो है वो उसके अहवाल को देख करके उसको अगर ये कहते हैं ना कि जी आपके जो इलाज मुआलजे के असबाब है ना वो कोई नजर नहीं आते, आपको गुनाहे कबीरा से बचने के लिए कि आप जो है ना वो शराब से और जो है वो यानी गंदे दोस्तों से और आप जो है वो गंदी सोहबत से और आप जो है वो टीवी की लानत से और फिल्मों की लानत से और चरस पीने की लानत से और जिनाकारी की लानत से जो बचना फर्ज है आपके ऊपर, ठीक है ना, इन बड़े बड़े गुनाह कबीरा से बचना आपके लिए फर्ज है। तो अब इसके इनसे बचने के लिए जो है ना वो बाकी सारी चीजें हमने ट्राई कर ली हैं, घर में बैठ करके आपको मुराकबा करने के लिए भी बता दिया, आपको जो है वो मुराकबा मजलिस में भी बुला लिया, आपको जो है वो बहुत सारी नसीहतें भी कर दी, आपको डरा भी दिया, आपको जो है वो जन्नत की नेमतों के बारे में बहुत कुछ बता दिया, लेकिन आप टस से मस नहीं होकर के दे रहे, बल्कि आप गुनाहे कबीरा करे चले जा रहे हैं, करे चले जा रहे हैं। तो अब जो है ना वो आपके लिए हमें एक ये रास्ता नजर आता है आपके इलाज के लिए, रूहानी इलाज के लिए, गुनाह कबीरा के दलदल से निकलने के लिए, कि आप जो है ना वो 40 दिन की जमात में जाएं, ठीक है? आप 40 दिन की जमात में जाएं और वहां पर आप जो है ना वो किसी ऐसे अल्लाह वाले की सोबत में 40 दिन तक गुजारें कि जिसके दिल का असर आपके ऊपर पड़े और आप बुराई के माहौल से जो है वो दूर रहें, ठीक है ना, ताकि आप जो है ना वो तौबा के ऊपर कायम रह सकें। तौबा फर्ज है, जमात में जाना फर्ज नहीं है, तौबा फर्ज है, राइट? इज्तिमा में जाना फर्ज नहीं है, तौबा फर्ज है, ठीक है ना? तो अगर डॉक्टर साहब यानी आपके शेख साहब जो है ना वो यही समझ में आ रहा है ना कि बस इसके अलावा और कोई आपके लिए चारा नहीं रह गया, तो तौबा तो भाई फर्ज है, गुनाह कबीरा को छोड़ना फर्ज है, ठीक है ना? तो अब जो है ना वो माँ बाप का हुक्म और ये इन दोनों चीजों को फिर मजीद देखा जा सकता है कि भाई माँ बाप का जो हुक्म है वो खाली जिद की वजह से और जो है वो तबलीग जमात की मुखालफत की वजह से या शेख साहब की मुखालफत की वजह से वो आपको रोक रहे हैं इन चीजों से। उनको तो भाई आपको गुनाहों से बचाने का भी तो करना चाहिए था ना कुछ, राइट? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप जिना कर रहे हैं, आप शराब पी रहे हैं, आप जो है वो डाका डाल रहे हैं, आप जो है वो क्या कर रहे हैं, वालदैन को टस समस नहीं हो रहे वो, ठीक है ना? तो भाई आपने बहरहाल तो तमीज के साथ जो है ना फिर आपको शेख का हुक्म मानना पड़ेगा, ठीक है ना? अपने नफ्स का हुक्म नहीं मानना पड़ेगा, शेख नफ्स चाह रहा था कि मैं जरा टूरिज्म करके आऊं, जरा दूसरा मुल्क देख करके आऊं, मलेशिया का ट्रिप करके आऊं, नफ्स चाह रहा था, ठीक है? नहीं, नफ्स के चाहने के ऊपर आप नहीं जा सकते ऐसी जगह पर वालदैन की मुखालफत करके, ठीक है? तो ये है हमारा दीन, हमारा दीन तो शेख के बगैर हमारे दीन है क्या, मतलब मेरे तो यही समझ में नहीं आता कि जिसका कोई शेख नहीं और जिसका शेख शैतान है तो वो कर क्या रहे हैं, ठीक है? मतलब फिर उसके बाद शैतान और नफ्स ही रह जाते हैं ना भाई, सही है? तो ये नफ्स और शैतान की बुनियाद पे इज्तिमात में जाना और तबलीगी जमात में निकलना ना, ये हमारे दीन के अंदर कभी भी नहीं था। तो ये तो भाई एक सिस्टम है हमारे दीन का जो कि सुन्नत सिस्टम है, नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से जो सिस्टम आया है उसको आप चेंज करके एक नया सिस्टम जो है ना वो इम्पोर्ट नहीं कर सकते इस दीन के अंदर, जो करता है फिर वो भरता है उसकी, ठीक है? बहरहाल तो आपके सवाल का ये जवाब था, जरा लंबा हो गया, माफ कीजिएगा। आगे फरमाते हैं कि कई नौजवान छोटी छोटी बातों पर माँ बाप के साथ सख्ती से पेश आते हैं और झगड़ा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप को जो अल्लाह ने रुतबा और दर्जा दिया है उसको सामने रखा जाए, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिज़ुल रब्बी फी रिज़ुल वालिदी व सख़तुर रब्बी फी सख़तिल वालिदी, कि रब की रजा वालिद की रजा में है और रब की नाराजगी वालिद की नाराजगी में है, ठीक है? तो वालदेन आपको जो भी कह रहे हैं अगर सही कह रहे हैं तो उनकी बात मानने की कोशिश की जाए, जिस तरह अल्लाह सही कहता है तो हम उसकी बात मानने के भागे भागे फौरन से अल्लाह का हुक्म मान लेते हैं, है ना? हमारे तो बस में भी नहीं है अल्लाह का हुक्म मानना, हम तो कोशिश भी करते हैं नहीं मान पाते, लेकिन कोशिश तो करते हैं ना। और आप अल्लाह ताला को कम अज कम ये दिखाते तो है ना कि अल्लाह मैं आपका मुखालिफ नहीं हूं, राइट, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपका हुक्म मानने की, लेकिन अल्लाह माफ फरमा दीजिए, गलती हो गई, कोताही हो गई, अल्लाह माफ कर दीजिए, ठीक है ना। तो अल्लाह जो कि सबसे बड़ा है, जिसने बनाया भी है, जिसने खिलाया भी है, जिसने पिलाया भी है, और सब कुछ अल्लाह ही का दिया हुआ है, तो अल्लाह ताला के साथ भी तो हम यही करते हैं ना, तो माँ बाप के साथ यही क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है ना, कि अम्मी आपका हुक्म जो है वो है तो बिल्कुल सही है, और मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर अमल करूँ, लेकिन अम्मी माफ कर दीजिए ना, सॉरी नहीं कर पा रहा हूँ, आप कोशिश नहीं कर पा रहा हूँ, बस है ना, यानी भीगी बिल्ली बन करके खड़े तो हो सकते हैं ना माँ बाप के सामने, ठीक है। दूसरी जो सूरत हाल है कि वो आपको नाजायज चीज का हुक्म दे रहे हैं, तो नाजायज चीज का हुक्म देने का मतलब ये नहीं है कि अब आप जो है वो उनसे बहस करना शुरू कर दें, और जो है वो अपनी दलाइल के जरिए से जो है वो उसको प्रूफ करके दिखाएं, फिकी दलाइल लेकर आए, इमाम अबू हनीफा ने फरमाया था, इमाम शाफी ने फरमाया था, और जो है वो फलाने शेख ने फरमाया था, और मेरे हजरत ने ये फरमाया था, और बेड़ा गर्क अपने हजरत के साथ कि माँ बाप और दुश्मन हो जाए हजरत के, ठीक है ना। तो माँ बाप के सामने हजरत को नक को हरगिज हरगिज कोट करने की जरूरत नहीं है ना, ये करके जो है ना वो आप बेसिकली मजीद हजरत के क्या पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं खाली, ठीक है ना। तो इस तरह की बहस मुबहसा करने की कोई जरूरत नहीं है उनसे, जो है ना बस बड़ा सिंपल सा जी 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 बस ऐसे, जी 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 है ना, बस खत्म बात। अगर आप देख रहे होते मुझे तो आप देख, आंखें भी थोड़ा सा नीचे झुका करके, सर जो है ना वो थोड़ा सा जिस तरह माशाल्लाह हमारे हैदराबादी भाई सर हिलाते हैं ना इस तरह से लेफ्ट राइट, उस तरह से माँ बाप के सामने हैदराबादी अंदाज में सर हिलाएं, जी 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 फरमाएं, और फिर जो फर्ज है, जो अल्लाह का हुक्म है, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश में लग जाए, ठीक है ना। बहस मुबहसा नहीं करना, ठीक है। खामखा की बहस करके जो है ना वो हम झगड़ा मोलते हैं, फिर बात से बात बनती है, बात बिगड़ती है, और फिर जो है वो नाजायज, यानी हम जुल्म कर रहे होते हैं बेसिकली, और जुल्म करने के बाद फिर हमें कौन सा नेकी का सवाब मिलने वाला है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अहदीस की रोशनी में वालदेन के नाफरमान की सजा। हदीस पाक में है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से फरमाया कि मिंबर हाजिर करो। हम लोगों ने मिंबर ला के रखा, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके एक दर्जे पे चढ़े तो फरमाया आमीन, जब आप दूसरे दर्जे पे चढ़े तो फरमाया आमीन, जब तीसरे दर्जे पे चढ़े तो फरमाया आमीन, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज से फारिग होकर नीचे उतरे तो हम लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने आपसे ऐसे अल्फाज सुने जो पहले नहीं सुने थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्राइल मेरे सामने आए और उन्होंने तीन बददुआएं की और मैंने तीनों बददुआओं पर आमीन कही, ठीक है ना। अब सबने यकीनन ये सुनी होगी, बल्कि अब आप रमजान मुबारक जैसे जैसे करीब आ रहा है तो ये हदीस और भी उम्मीद है कि आपको ज्यादा सुनने को मिलेगी, क्योंकि इन तीन बद्दुआओं में से एक बद्दुआ जो थी वो रमजान मुबारक के मुताल्लिक थी। तो फरमाते हैं कि अब आप गौर करें कि माँ बाप जितना भी बच्चे से नाराज हों मगर बच्चे को बद्दुआ नहीं देते, बद्दुआ तो कोई नेक माँ तब ही देती है जब मामला हद से गुजर चुका हो। इसी तरह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मत पर बहुत रहीम और करीम थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बद्दुआ के ऊपर आमीन नहीं फरमा सकते थे, लेकिन ये काम थे ही ऐसे कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन पर आमीन कह दी। वो तीन बद्दुआएं ये थी कि अल्लाह की रहमत से दूर हो वो शख्स जिसने रमजान का महीना पा लिया और उसकी मगफरत ना हो सकी, लिहाजा इस पर मैंने कहा आमीन। यानी इतनी रहमतें बरसती हैं, इतनी रहमतें, और इतने अल्लाह ताला ने मौके खोले हुए होते हैं अपनी मगफरत के फिर भी कोई शख्स जो है ना वो अपने आप को दूर कर ले अल्लाह की रहमत से, तो इसका मतलब यह है कि वो कमबख्त नहीं है बल्कि वो बदबख्त है, ठीक है। तो ऐसे बदबख्त शख्स के ऊपर तो फिर यानी फटकार ही होगी ना, इसलिए कि रमजान में जो बंदा अल्लाह के सामने सच्ची तौबा करता है अल्लाह उस बंदे को अपने दर से खाली नहीं लौटाते, तो जो रमजान की रहमत भरे महीने में भी अपनी बख्शिश ना करवा सका वो तो बहुत बदबख्त इंसान है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बददुआ पर आमीन कहा, ठीक है। यानी तौबा तो सच्ची वो रमजान के बाहर करे तो भी अल्लाह ताला कबूल फरमा लेते हैं। यहाँ पर रमजान में फर्क क्या होता है जो कि हजरत ने यहाँ पे नहीं बयान किया लेकिन बहुत सारी दूसरी जगहों पर बयान फरमाया, वो ये कि अल्लाह ताला ने रमजान मुबारक में बेशुमार असबाब बना दिए होते हैं, बेशुमार मौके बना दिए होते हैं मुतवज्जह करने के अपनी रहमत की तरफ, ठीक है ना। तरावी की नमाज होती है, रमजान के रोजे होते हैं, सेहरी का वक्त होता है, उसके अंदर आप तहज्जुद की नमाज आप पढ़ सकते हैं, खाने के साथ साथ जो है वो दौरे के तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं, कुबूरियत का वक्त है, नमाज के अंदर, तरावी के अंदर आपको कुरान मजीद जो है वो कसरत से सुनने को मिलता है, और फिर बहुत सारी चीज़ें आपकी जो होती हैं वो रमज़ान मुबारक में बंद हो जाती हैं, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट का जो अल्लाह ताला ने एक एक इंतज़ाम फरमा दिया ना, अब कोई इससे फ़ायदा ना उठाए तो वो फिर बदबخت है। फिर जब दूसरे दर्जे पे चढ़ा तो वो कह रहे थे कि अल्लाह की रहमत से दूर हो वो शख्स जिसके सामने आपका जिक्र हो और वो आप पर दुरूद ना पढ़े, लिहाजा इस पर मैंने कहा आमीन। क्या मतलब है ना, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने दुरूद नहीं पढ़ा तो वो बदबख्त हो जाए, इसका क्या मतलब है? इसका भी यही मतलब है जो कि रमजान मुबारक का मतलब है, कि नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से जो हमें अल्लाह ताला की रहमतें पहुंची हैं, जो बरकतें पहुंची हैं, जो फायदे पहुंचे हैं, और जो अजीम तरीन नुकसान से बचाओ के जरिए हम तक पहुंचे हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम का हमारे ऊपर इतना हक है, इतना हक है, इतना हक है, कि अगर हम फूटे मुंह जो है ना सिर्फ दुरूद शरीफ भी नहीं पढ़ सकते हैं आप के नाम के आने के ऊपर। ठीक है, तो इससे ज्यादा जो है ना वो यानी अनग्रेटफुल इंसान है ना, और इससे ज्यादा जो है ना वो नाशुक्रा इंसान और नाकदरा इंसान जो है ना वो और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसकी भी बदबख्ती के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने आमीन कहे। ठीक है, और ये उन बातों में से है कि वमा यंतिकु अनिल हवा, आप ने जो बात कही ना, इसलिए नहीं कि कोई अपनी हिरसो हवा से बात करे, ओ मेरे ऊपर दरूद नहीं पड़ा इस वजह से मैं उसकी बदबख्ती के ऊपर आमीन कहूंगा, नहीं, वमा यंतिकु अनिल हवा, अपने हवा से वो नुतक नहीं फरमाते थे, बात नहीं फरमाते थे, तो ये भी अल्लाह ही की तरफ से नबी अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर अलका किया गया, उधर से जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया बद्दुआ करने के लिए, और दिल में बात डाली गई कि इसके ऊपर आप आमीन कहें। ठीक है, तो लिहाजा इस पर मैंने कहा आमीन, और जब मैंने तीसरे दर्जे पर कदम रखा तो जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाए वो शख्स जो बूढ़े वालदैन को पाले या दोनों में से एक को पाले, फिर वो उस शख्स उसको जन्नत में दाखिल ना करा सकें। मैंने कहा आमीन, वो दाखिल ना करा सकेंगे मतलब यही नहीं है कि उनसे जो है ना वो जन्नत की दुआएं ले रहा है और वो जन्नत की दुआएं करेंगे और फिर जो नहीं, दुआ करें या ना करें इससे गर्ज नहीं है, मतलब ये है कि ये उनके साथ सब्र और बर्दाश्त के साथ उनकी जो है वो खिदमत करता है कि नहीं करता, जिसके ऊपर अल्लाह ताला जो है वो उसको जन्नत अता फरमाएंगे। तो माँ बाप को बुढ़ापे में पाना और उनकी खिदमत करके अपनी बख्शिश ना करवाना बहुत बड़ा जुर्म है। माँ बाप अक्सर, पहले भी बात हो चुकी है, जब इस उम्र में पहुंचते हैं ना और उनके ऊपर बड़ी बड़ी बीमारियों के हमले हो चुके होते हैं, अक्सर जो है वो फालिश का अटैक भी हो चुका होता है, और वो एक इंतहाई यानी एक लाचारी की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। ठीक है, तो आम माँ बाप जो होते हैं ना वो फिर इस हालत में जो है ना वो बददुआएं देते हैं, दुआएं नहीं देते, ठीक है ना, या बहुत बुरा भला सुनाते हैं, बहुत डांट सुनाते हैं, और कभी कभी उनको एहसास हो भी जाता है, लेकिन ज्यादातर वो डांट और इस किस्म की चीजें सुना रहे होते हैं। ठीक है ना, तो यानी इसके ऊपर दिल बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है कि वो दुआ क्यों नहीं देते हैं, उनको तो दुआ देनी चाहिए, दुआ नहीं दी उन्होंने तो इसका मतलब है मैं तो बर्बाद हो गया। ठीक है, नहीं भाई, अल्लाह ताला सब देख रहे हैं, अल्लाह ताला को आपके दिल की नियतों का और आपके दिल की चाहतों का भी पता है, और अल्लाह ताला को आपके वालिदैन की जो है ना वो फिजिकल यानी जो उनकी हालत हुई हुई है उसका भी अल्लाह ताला को सब पता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला इस बुनियाद पे नहीं कि भाई वो दुआ देंगे तभी होगा, नहीं दुआ देंगे तो ये जितने भी इखलास के साथ उनकी खिदमत करता रहे और जितना ही मेरे साथ रुजू करता रहे मैंने उसको जन्नत में नहीं दाखिल करना, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फरमाया कि हदीस मुबारका में है कि तीन तरह के लोगों को अल्लाह ताला कयामत के दिन रहमत की नज़र से नहीं देखेंगे, यानी तीन गुनाहगार ऐसे होंगे कि अल्लाह ताला उनका चेहरा भी देखना पसंद नहीं फरमाएंगे, उनमें से एक वो शख्स होगा जो माँ बाप का नाफरमान होगा। ठीक है जी, एक हदीस मुबारक में है कि चार बंदे कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा कि जहन्नम में गए कुछ अरसे सजा के बाद जन्नत में चले गए। ठीक है, तो वो कौन होंगे कि सूद खाने वाला, शराब पीने वाला, यतीम का माल खाने वाला और माँ बाप का नाफरमान इंसान। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट्स में लिखा है कि ऐसा नहीं होगा कि जहन्नम में गए और कुछ अरसा सजा के बाद जन्नत में चले गए, यानी कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, तो अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि कभी भी दाखिल नहीं होंगे, अगर ईमान के ऊपर उनका खात्मा हुआ है तो वो कभी तो दाखिल होंगे, लेकिन कुछ अरसा सदा के बाद नहीं दाखिल होंगे, बल्कि बहुत लंबा अरसा सदा के बाद दाखिल होंगे। ठीक है, बहुत लंबे अरसे सदा के बाद दाखिल होंगे। ठीक है, तो ये इसका यही मतलब है, क्योंकि ईमान के ऊपर जिसका खात्मा होता है तो उसके ऊपर ऐलान है और उम्मत का इस बात के ऊपर इजमा है कि वो कभी ना कभी तो जन्नत के अंदर दाखिल होगा, चाहे वो सूद खाने वाला हो, चाहे वो शराब पीने वाला हो, चाहे यतीम का माल खाने वाला हो, चाहे माँ बाप का नाफरमान इंसान हो, लेकिन इतनी लंबी सजा के लिए अपने आप को पेश कौन करेगा भाई। इसी तरह अल्लाह ताला ने 7 बंदों पर लानत फरमाई है, और इन 7 बंदों में से एक वो है जो माँ बाप का नाफरमान होता है। लानत की डेफिनेशन ये होती है कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से दूर कर दिया किसी को, इसी को लानत पढ़ना कहते हैं। तो अल्लाह ताला की रहमत ही से तो है जो कुछ भी है हमारे पास अच्छा। ठीक है, तो अगर रहमत दूर हो गई तो फिर कहाँ से लेकर के आएंगे अच्छी चीजें। कई गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी सजा आखिरत में मिलती है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी ऐसा गुनाह है कि आखिरत में तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, मगर अल्लाह दुनिया में भी इसकी सजा देते हैं, दुनिया में भी बंदा इससे नहीं बच सकता। ऐसे शख्स को दुनिया में ही अल्लाह ताला इबरत का निशान बना देते हैं। ठीक है, तो माँ बाप की नाफरमानी इसका मतलब जो है वो उनका दिल, यानी उनको तकलीफ देना, अजियत देना, और उनकी जो है वो खिदमत से जो है वो अपने आप को दूर रखना। ठीक है, तो ये मफहूम है यहाँ पे नाफरमानी का। बाय हुक और बाय क्रुक, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम अमरदारी यहाँ पर मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो मामला है ना, तो इतनी बड़ी बड़ी सजाएं, इतनी लंबी लंबी सजाएं, और यानी दुनिया में भी सजाएं। ठीक है, तो इसका हल क्या है फिर, करे तो क्या करे बंदा ना। ठीक है, तो 8 बातों से इज्तनाब करें वो तो हम बाद में पढ़ते हैं, लेकिन जो बहुत ही सिंपल टिप है ना उसकी, वो ये है कि बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है ना, बी वेरी वेरी केयरफुल विद द पेरेंट्स। ठीक है ना, क्योंकि ये पेरेंट्स जो है ना, ये यानी इट इज यानी है तो बहुत ही माशाल्लाह प्यार मोहब्बत वाली चीज, जिन्होंने आपको पाला पोसा, और जिनके माशाल्लाह वालदैन के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं, तो वो तो यानी दिल दिल को दिल से राह होती है उनके वालदैन के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना वो उनको किसी जस्ट जस्ट लाइक एनी वन एल्स ट्रीट करना शुरू कर दें। ठीक है ना, कि भैया ये तो मैं बड़ी है ना, यानी फादर जो है ना वो बड़ी हैं, तो जिस तरह मैं बड़ी के साथ रहता हूँ उसी तरह मैं अपने फादर के साथ रहता हूँ, है ना, या अम्मा को जो है ना वो फ्रेंड बना करके। बाकायदा हमारे यहाँ तो एक कल्चर है, शायद यूपी वाले लोग गालबन, या पता नहीं दिल्ली वाले लोग, वो अम्मा को जो है ना माँ को आपा कहते हैं। ये बचपन में हमें किसी ने बताया, उन्होंने देखा भी कि वो अपनी अम्मा को आपा कह रहे हैं। तो भाई आपा आप कहें या जो भी कहें, लेकिन कम से कम उनको आपा की तरह ट्रीटमेंट कीजिए, मत कीजिएगा, वो हैं वालिदा। ठीक है, तो वालिदा को वालिदा की ट्रीट तरह से ट्रीट करना, और बी वेरी केयरफुल कि भाई दिस इज लाइक प्लेइंग विद फायर। ठीक है, तो आप जब फायर के साथ खेल खेलते हैं अगर ना, तो जलने का खतरा होता है ना, तो आप भाई आप बड़ी एहतियात के साथ, है ना, वो बचपन में हम जब लाइट जाती थी ना कराची के अंदर, तो मोमबत्ती जलाते थे लाइट के लिए, तो फिर वो मोमबत्ती का जो फ्लेम होता था ना, तो उसके साथ हम खेलते थे, ऐसी उंगली ऊपर से पास करते थे तो वो जलती नहीं थी, तो सब बच्चे एक दूसरे को दिखा रहे, देखो देखो हमने, तो इट वाज लाइक प्लेइंग विद फायर। तो अब उसके अंदर बड़े जब देखते हैं, कहते नहीं नहीं भाई बच्चे बी केयरफुल, है ना, एहतियात करो, अगर जल गया किसी बच्चे का हाथ जो है वो जल गया, भैया आप आग से खेल रहे हैं ना। ठीक है, तो बेशक देखने में वो बहुत अच्छी और बड़ी जो है वो दिलरुबा, उसके फ्लेम के कलर्स क्या जबरदस्त जबरदस्त होते हैं, लेकिन है तो भाई वो आपके लिए जलने का सबब बन सकती है। तो वालदैन के साथ बहुत एहतियात, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जन जानों वाला मामला है। एहतियात का मतलब ये है कि यानी ऐसे मत करें उनके साथ जैसे कि आप अपने किसी दोस्त यार या किसी बच्चे के साथ करते हैं। दूसरी बात ये है कि चाहे जितनी भी एहतियात कर लें या चाहे जितनी भी खिदमत कर लें ना, वालदैन स्पेशली जब वो बूढ़े हो जाते हैं ना, तो मुश्किल हो जाता है मामला। ठीक है ना, उनका मिजाज जो है वो बहुत ही यानी अजीब व गरीब किस्म का हो जाता है, अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे होते हैं, अजीब व गरीब किस्म की आपको रीजंस के ऊपर जो है वो डांटना डपटना और उल्टी सीधी बातें, हत्ता कि वो कभी जो है वो ऐसा भी शुरू कर देते हैं कि वो यानी उनके दिमाग में आ गया कुछ, अब वो पूरी दुनिया में फोन करके आपकी बुराइयां कर रहे हैं, है ना। अजीब और गरीब किस्म की हरकतें हो रही होती हैं, ठीक है। तो अब जो ये मामला हो रहा होता है ना, तो अगर आपको अपने गुस्से के ऊपर काबू नहीं है ना, अगर आपको अपने मिजाज के ऊपर काबू नहीं है, तो बहुत बुरा मामला हो सकता है, बहुत बुरा मामला आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिकली इट्स लाइक दे पुश, वो आपको एक्सट्रीम लिमिट तक लेकर के जा रहे होते हैं, और किसी के अंदर फोरबेरेंस नहीं है, किसी के अंदर जो है ना वो तहमुल नहीं है ना, वो तो फिर बहुत ही गलत तरीके से रिएक्ट करके अपनी जान अपने लिए वाजिब कर सकता है, ठीक है। क्या फरमाया आपने, ये औरतों के लिए है क्या माँ बाप के साथ केयरफुल रहना? क्या मतलब औरतों के लिए है क्या भाई, मिसाली बेटा पहली बात तो बात हो रही है, औलाद के लिए है, औरतों के लिए क्या मतलब? औलाद को कहा जा रहा है कि वो अपने माँ बाप के साथ एहतियात के साथ रहें, कि माँ बाप के साथ अगर आपने गड़बड़ मचा दी ना, तो आप जहन्नुम में लैंड कर सकते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात है, इसमें कौन सी कॉम्प्लिकेशन आ गई, ठीक है। तो तहम्मुल जो है ना, ये जिसने नहीं सीखा ना, और जिसने मशाइख की बात के अच्छे अखलाक सीख लो, और जो है वो गुस्से को जो है वो गुस्से का इलाज कर लो, मुराकबा कर लो, ताकि तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल, मेरे पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों का, क्या हो गया अगर मैंने गुस्सा कर लिया तो कुछ नहीं होता, और है ना यही बंदा जो है ना जिसने की बात नहीं मानी ना, जिसने रिजेक्ट कर दिया मशाइख की नसीहतों को और इन बातों को कि भाई ये रूहानी बीमारियां ये नुकसान पहुंचाती हैं, तो फिर ऐसे बंदे के साथ क्या होता है कि अल्लाह ताला उसको आजमाइश में डालते हैं, जैसे बूढ़े माँ बाप के साथ आजमाइश, ठीक है ना। और फिर क्या होता है कि वो उस आजमाइश में नाकाम हो जाता है, क्योंकि उसने तो अपने गुस्से के ऊपर मेहनत करी नहीं थी, अपने मिजाज पर मेहनत करी ही नहीं थी, है ना। अल्लाह के नेक बंदों की बात को इसने जो है वो जूती के नोक पे उड़ा दिया था, तो सजा से बच जाएगा ये, हरगिज नहीं है, हो ही नहीं सकता भी सजा से बचे, तो अल्लाह ताला ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिसके अंदर जो है ना ही विल कमिट सच एक्ट्स, ही विल कमिट सच ब्लंडर्स के जिससे जो है ना इसके ऊपर जहन्नुम वाजिब, ठीक है भाई। तो आसान तरीका, बल्कि वाहिद तरीका यही है कि इससे पहले कि अल्लाह ताला आपको ऐसी सिचुएशन में मुबतला करें जहां पर कि आप अपने लिए जहन्नुम वाजिब करें, जब खैर खैरियत वाली जिंदगी गुजर रही है ना, इसी के अंदर बड़ों की बात को संजीदा लेकर के अपनी इसलाह की मेहनत के अंदर लग जाएं, ताकि कल को खुदा ना खास्ता कोई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई, तो उसके अंदर जो है ना वो बर्दाश्त का मादा आपके अंदर मौजूद हो, ठीक है। इंडिया की बाज़ स्टेट्स में माँ बाप को अरे तुरे तू से बात करते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, ये डिपेंड करता है कि उनके यहाँ यानी उर्फ में जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है ना वो क्या है, ठीक है। तो अगर यानी हर जगह ये आप जनाब जो है ना, ये आपके यूपी लखनऊ वगैरह के अंदर आप जनाब होता है, या ज्यादा से ज्यादा शायद बिहार के अंदर कुछ लोग आकर, हर जगह नहीं आप जनाब से बात हो रही होती है, वहां पे वो ये तू जो है ना दिस इज लाइक नॉर्म, ठीक है ना। तो ये फिर अंदाज बात करने का, अल्फाज से फिर ये डिटरमिन नहीं होगा कि वो बदतमीजी कर रहे हैं कि वो नॉर्मल बात कर रहे हैं, बल्कि अंदाज से और जज्बात से इस बात का फैसला किया जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हर कल्चर जो है वो एक जैसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, तो इस वजह से इसका भी आपको जो है ना वो यानी क्या कहते हैं उसको हमारे हजरत टॉलरेंस रखनी पड़ेगी, ठीक है। कल्चरल टॉलरेंस भी आपको रखनी पड़ती है कि किस कल्चर के अंदर क्या चीज अदब शुमार होती है, किस कल्चर के अंदर क्या चीज है ना वो बेअदबी शुमार होती है, ठीक है। टाइम हो गया, हाँ टाइम खत्म हो गया, तो 8 बातों से इज्तनाब का जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह फिर हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अगर किसी को सवाल पूछना है तो जी मजीद पूछ सकते हैं, रुक सकते हैं उसके लिए, ठीक है। चले फिर कोई सवाल नहीं है मजीद, तो फिर हम क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं, वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।